महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि तुम झूठ बोलो। क्या झूठ बोलो? अश्वत्थामा मर गया, मरो वा कुंजरो वा, ऐसे बोला उन्होंने। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत दर्द हुआ ये झूठ बोलने के लिए। उन्होंने पूछा भगवान को, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं तो धर्मराज हूँ, कभी झूठ निकलता ही नहीं मेरे मुंह से। लेकिन भगवान ने बोला कि मेरे इच्छा के लिए तुम्हें बोलना चाहिए, मेरी इच्छा है कि तुम झूठ बोलो, क्योंकि तुम नहीं बोलोगे भीम बोलेगा, अर्जुन बोलेगा, उसको द्रोणाचार्य गंभीरता से नहीं लेंगे, तुम बोलने से वो मानेंगे, इसलिए तुमको ही बोलना पड़ेगा। तो इसे महाराज मान लिया, तो फिर भी उनको बहुत तकलीफ हुई बोलने में, इसलिए भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी को मारा उन्होंने। तो अभी बोला भीम ने, अभी तो तुम हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं, अभी बोलो कि अश्वत्थामा मर गया क्योंकि हाथी मर गया। तो बोला उन्होंने, मरो वा कुंजरो वा बोला उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने बोला, इसका मतलब क्या है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया, ऐसे बोला उन्होंने। तो भगवान ने क्या किया, अश्वत्थामा बोलने के बाद ऐसे शंख बजाया भगवान ने। तो द्रोणाचार्य ने क्या सुना, अश्वत्थामा मर गया, ऐसे सुना उन्होंने। बस इतना करना पड़ा भगवान को उनके मुंह से निकालने के लिए शब्दों को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरह कभी भगवान की भलाई के लिए कभी झूठ बोलना होता है, तो इसको ट्रांसेंडेंटल फ्रॉड बोलते हैं प्रभुपाद जी। कभी कभी आपके मित्र बुलाते हैं आपको, सिनेमा में आओ, हम जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार बुला रहे हैं, और बोलते हैं कि मुझे बहुत बड़ा सर दर्द है, तो बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लेट जाते हैं और वो सिनेमा जाने के बाद आप मंदिर में आ जाते हैं। आप कभी हम ऐसे धोखा देते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरह के धोखा में कुछ गलत नहीं है। तो उदाहरण देते हैं, वो सनातन गोस्वामी जेल कीपर को कैसे उन्होंने थोड़ा पैसा दी, उनके पास जो भी सोने के सिक्का थे उसके पास दे दिया। इन्होंने भी कहता है, सनातन गोस्वामी ने भी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोगों ने अनेक मार्गों के द्वारा वो क्षेत्र महाप्रभु की पद कमलों को का आश्रय लिया उन्होंने ऐसे। तो प्रभुपाद जी ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं इसमें। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्रभुपाद जी के गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वो बोलते थे कि ये दुनिया वंचित, जो धोखा देने वाला और धोखा खाने वालों का दुनिया है, चीटर संद चीटर, ये दुनिया ऐसा दुनिया है, ऐसे वो बताते थे। तो हमें धोखा देना भी नहीं चाहिए, धोखा खाना भी नहीं चाहिए। तो देखिए कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के पहले लोग सत्यपरायण थे, तो धर्मपरायण जो होते हैं वो कभी भी झूठ बोलते नहीं थे किसी भी कारण के लिए, क्योंकि अगर किसी ने किसी को आपने वचन दिया है मुंह से भी, वो वचन बद्ध थे लोग, प्राण भी जाए वचन न जाए, अपने प्राण को भी त्याग देंगे लेकिन वचन को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे अनेक कथाएं आते हैं, जैसे कोई गाय को जंगल में एक शेर पकड़ लिया, वो खाने वाला था, लेकिन गाय ने बोला कि मैं आज का दूध में देना चाहती हूँ अपने बच्चे को, आप छोड़ दो मुझे, मैं मेरे बच्चे को दूध पिलाकर उसको बोलकर आ जाती हूँ कि मैं कल से मैं नहीं मिलूंगी, मेरा मृत्यु आ गया है, इस तरह मैं बोलकर आ जाऊंगी, आप मुझे छोड़ो। शेर ने पूछा कि अगर तुम चले जाओगे तो कैसे वापिस आओगी, लेकिन गाय ने वचन दी, लेकिन जाकर आ गई गाय वापिस, तो शेर उसको देखकर इतना खुश हो गया कि गाय को छोड़ दिया उसने। ऐसी कथाएं हम सुनते हैं। तो आप देखेंगे हर एक व्यक्ति का भी कुछ चीज होता है आत्मविश्वास जो बोलते हैं हम। जैसे रेलवे स्टेशन में कभी कभी कोई शेंगदाना बेचता है लड़का, तो आप 2 रुपये का लेते हैं, 3 रुपया बाकी चाहिए, उसके पास चेंज नहीं है, तो कभी दुकान से खरीदता है वो चेंज लेकर आपको देने के लिए आता है। कभी कभी ट्रेन गाड़ी चला जाता है आगे, तो कभी कभी बाग बाग कर पीछे आकर खिड़की से आपके पास पैसा दे देता है, कभी प्लेटफॉर्म के अंत तक आ जाता है, उसके बाद पैसा देकर चला जाता है ना। आपको लगता है कि इतना ये 3 रुपए के लिए अपने जान छोड़ देगा, ऐसा लगता है हमें, लेकिन वो क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलेंगे कि छोटा लड़का था उधर पुणे स्टेशन में, वो 3 रुपया पॉकेट अपने पॉकेट में लगा दिया है, ले लिया अपने पॉकेट में है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो लोगों के अंदर इस तरह का भावना होता है कि कभी अगर हम वचन दिया तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जब कलयुग शुरू हुआ, लोगों में तरह तरह के कलमश आने लगे कलयुग के प्रभाव से। तो ऐसा बताया जाता है कि इसके पुराने जमाने में कलयुग के पहले, तो एक किसान ऐसे ही खोद रहा था जमीन को, उसको एक गड़ा मिल गया जिसमें पूरा सोने के सिक्के थे, तो वो दे दिया अपने मित्र को, जिससे उसने खरीदा उसको दे दिया वापस। लेकिन कलयुग जब शुरू हुआ, ये किसान को खेत जोत रहा था, उसको गड़ा मिला और उसमें सोने के सिक्के मिले, लेकिन वो अपने घर में रख दिया वो। तो वो दूसरे किसान को पता चल गया कि इसने चोरी किया है, तो मेरे जमीन से मिला है सोने के सिक्का, तो मेरा ही होगा। तो राजा को शिकायत की, तो राजा इतना बड़ा चालू व्यक्ति था, वो पूरा छीन लिया सोने के गड़ा को, बोला कि अब दोनों को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं राजा, देश का राजा हूँ, आपके सारे जमीन मेरे हैं। तो अपने पॉकेट में ले लिया वो पूरा। तो कलयुग का प्रभाव है ऐसे। तो कलयुग में हर एक व्यक्ति स्वार्थी होता है इस दुनिया में, और अपने भलाई के लिए दूसरों को धोखा देता है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं, लोग इतना ही नहीं कि धोखा देते हैं, धोखा देने के बाद दूसरों को बोलते हैं, देखो मैं कितना अच्छा धोखा दिया, मैं कितना बड़ा निपुण हूँ धोखा देने में, कितना बड़ा दक्ष हूँ मैं, कितना बुद्धिमान हूँ, और ऐसे लोग बोलते हैं। तो कोर्ट में भी लायर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको पहले पूछते हैं कि आपको आपका केस क्या है, आपको कैसे जीतना है वो बोलो, क्या क्या धोखा देना है वो हम देख लेंगे, क्या क्या गलत चीजों को जोड़ना है हम देख लेंगे, ऐसे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जीव के अंदर 4 त्रुटियां हैं, आपको मालूम है, अपूर्ण इंद्रियां हैं, और अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम मोहित हो जाते हैं इस दुनिया में, और मोहित होने के कारण हम गलतियां करते हैं, गलतियां जब करते हैं उसको छुपाते हैं, छुपाने के लिए हम धोखा देते हैं दूसरों को, इसको चीटिंग टेंडेंसी बोलते हैं, उसको धोखा देते हैं। तो धोखा देना प्रभुपाद जी बोलते हैं बद्ध जीव का एक प्रथम योग्यता है, बोलते हैं जैसे शुद्ध भक्त का अच्छे अच्छे योग्यता होता है, इस तरह धोखा देना बद्ध जीव का योग्यता है, और वो ऐसे धोखा देने में मजा लेता है। और अनेक लोग अपने बारे में कभी कभी बड़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं बहुत चीज। जैसे एक लड़का बोल रहा था अपने स्कूल मेट्स को, वो बोल रहा था कि मैं ऐसे लंदन गया था मेरे मामा के घर में, तो और एक लड़की थी उसके ग्रुप में, वो सब छोटे बच्चे थे स्कूल में, उसने पूछा था लंदन में तुम किधर गया बोलो, तो बोला लंदन में ऐसे ऐसे फलाना फलाना सिटी में गया था। तो उसने पूछा क्या क्या देखा तुमने, वो बोला कि इतना सुंदर पहाड़ है उधर, इतने सुंदर समुद्र थे वगैरह बोला उसने। तो उसने वो लड़की बोली कि उधर समुद्र भी नहीं पहाड़ भी नहीं उधर, जैसे अगर कोई बोलेगा पुना में मैं समुद्र के पास गया, पुना में किधर समुद्र है। तो वो लड़की बोली, सब लोग हंस पड़े, क्योंकि कभी कभी लोग अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर दूसरों को बोलना चाहते हैं, क्यों, ताकि लोग उनको सम्मान दें, इसलिए लोग दूसरों को धोखा देते हैं, थोड़ा और भी जोड़कर बोल देते हैं दूसरों को अपने बारे में। ये भी बद्ध जीव का क्या है, आदत है, धोखा देने का आदत है इसे। ऐसे एक बार कलयुग के शुरुआत में 4 चोर लोग थे, तो वो बहुत बड़े जमींदार को मार के चोरी करके पैसे लेके आए थे वो लोग। तो ऐसे एक टाउन में गए, तो उधर एक बगीचे में बैठ गए, आ जाओ अभी हम बांटेंगे इसको। लेकिन एक ने बोला कि अभी हम लोग बहुत थक गए, अभी नदी में थोड़ा नहा लेंगे, नहाने के बाद थोड़ा खाएंगे, खाने के बाद थोड़ा आराम करके उसके बाद हम बांटेंगे, इतना जल्दीबाजी करने की क्या, अभी तो जो लूटा लूटी करना वो हो गया, अभी तो पैसे तो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो तुरंत 4 लोग लेट गए, 2 लोग बोले कि हम होटल में जाकर कुछ लेके आते हैं। तो वो होटल में गए, तो होटल में उनको गरम गरम जलेबी, सब गरम गरम पराठा सब मिला, तो उधर ही बैठकर खा लिया उन्होंने। खाने के बाद उनको पैकिंग करके लेके जाना था अपने मित्रों को, तो एक ने बोला देखो हम लोग चार लोग हैं, अगर हम बंटवारा करेंगे तो पैसा कितना कम हो जाएगा, ये सोना चांदी। तो दूसरे ने पूछा इसका मतलब क्या, क्या वो दोनों को उड़ा देंगे हम? तो उसने बोला हाँ वही मेरा आइडिया है। तो उसने बोला ये तो बड़ी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा जहर मिला दो बस हो गया, जो वो खरीदे सब जो भी खरीदा उसमें जहर मिला दिया वो भोजन में, तो मिलाकर लेके जा रहे थे। इतने में वो दो लोगों ने प्लानिंग किया, अरे ये दो लोग आएंगे अभी चारों के चार हम बांटेंगे तो कितना हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो उनके पास एक गन था, पिस्टल था, तो वो टायर वेट कर रहे थे। दो लोग जब आ रहे थे ऐसे मार दिया दोनों को तुरंत, तो वो लोग नीचे गिर पड़े गोली मारने से मर गए वो, और उधर ही भोजन पड़ा था। तो ये दो लोग सोचा कि हम भोजन खाकर हम उसके बाद बंटवारा करेंगे, दोनों भोजन कहे आपको मालूम होगा क्या हुआ होगा उधर, चारों के चार मर गए ऐसे। तो इस तरह इस दुनिया में लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं ऐसे। एक बार प्रभुपाद जी गोल्डन गेट पार्क में चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो इतने ठंडी का मौसम था बाहर, इतना फॉग कोहरा था बाहर, तो प्रभुपाद चलते समय अनेक बतख बैठे थे और बतख ऐसे आंख बंद करके अपने पंखों से अपने को ऐसे रखते थे, बहुत शांति से सो रहे थे वो। लेकिन भक्त लोग जब आवाज करके ऐसे सामने जा रहे थे 10-15 भक्त, वो आवाज को सुनकर वो बतख उड़ गया तुरंत, आंख खोल कर देखा कि सामने से लोग आ रहे हैं। तो एक भक्त उसको बगा रहता बतख को, चले जाओ ऐसे बगा रहता उसको, स्वामी जा रहे हैं साइड में चले जाओ। तो बतख तो भाग गया उधर से, तो प्रभा जी हंस पड़े। प्रभा जी बोले कि देखो तुम सोचते हो कि बतख तुम्हारे लिए बड़ा डिस्टर्बेंस है, वो तुमको परेशान करता है क्योंकि सड़क के बीच में पड़ा है, लेकिन बतख सोचता है कि तुम उसके उसको परेशान करते हो, ऐसे बोले प्रभा जी। तो इस दुनिया में सब लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग मुझे परेशान करते हैं, लेकिन वो लोग इनको सोचते हैं कि ये आदमी मेरा परेशान करता है। तो प्रभा जी बोले कि इस दुनिया में हर एक जीव क्या करता है, ये दुनिया ऐसा दुनिया है कि एक दूसरे को तकलीफ देना ही है, दुनिया का नियम है भौतिक दुनिया का, एक दूसरे को तकलीफ देना, मैं आपको तकलीफ दूंगा आप मुझे तकलीफ दोगे ऐसे। जैसे दिवाली के बाद लोग इतने स्वीट खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं लंबा लाइन लग जाता है, लेकिन डॉक्टर जब खिड़की से बाहर देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे में मुस्कान है कि इतने लोग पैसा लेकर आ गए मेरे पास। तो ये दुनिया में अगर कोई व्यक्ति को खुशी पाना है तो दूसरों को दुख देना होता है, दुनिया में ऐसा दुनिया है। जैसे आप स्कूल में बच्चे खेलते हैं स्पोर्ट्स गेम में, एक दो तीन ऐसे खड़े रहते हैं आपने देखा है, और बाकी सब लोग पराजित हो गए है ना, उनको पुरस्कार नहीं मिलता है, प्राइस नहीं मिलता है ऐसे। तो इस दुनिया में अगर किसी को विजय प्राप्त करना है तो दूसरों को पराजय करना पड़ेगा, ऐसे भौतिक दुनिया है इधर। लेकिन भगवान के धाम में आपका जो सीट है उसका वैकेंसी हमेशा के लिए है, अभी भी वो वैकेंसी है, जब आप जाएंगे उधर वो वैकेंसी भर जाएगा, और आपके वैकेंसी को कोई भर नहीं सकता उधर, आपको ही जाना पड़ेगा उधर, और उधर कुछ कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है उधर। जैसे कंपनी का इंटरव्यू होता है, अगर 10 लोगों को लेने वाले हैं तो 10,000 लोग बैठते हैं इंटरव्यू में कभी, लेकिन बाकी लोगों को पराजय प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के धाम लौटने में ऐसे किसी पराजय की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति सिर्फ हमें सुधारना है बस, अगर हम सुधार गए तो भगवान धाम वापस लौट सकते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में क्या है, हर एक जीव स्वार्थ बनकर दूसरों को धोखा देकर अपने यश अपने धन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है इस दुनिया में। जैसे अलेक्जेंडर, वो सारे दुनिया के सिकंदर बोलते हैं ना, सिकंदर सारे दुनिया में घूमकर इतने देशों को प्रदेशों को पकड़ा उसने, सारे दुनिया को घेर लिया उसने 19 साल में, उसका सिर्फ 29 इयर्स था 29 इयर्स में, लेकिन 32 साल में मर गया वो, कुछ भी नहीं लेके गया साथ में। इसलिए हम बोलते हैं ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ लेके चलेंगे, जो इस दुनिया में पाया इधर ही छोड़कर चलेंगे। इस दुनिया में हम जो भी पाते हैं उसको इसी दुनिया में छोड़ते हैं हम, और साथ में कुछ नहीं लेके आते हैं, साथ में नहीं लेके जाते हैं। लेकिन जो जीव धोखा देना चाहते हैं वो ये सब चीज याद नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो शरीर से पहचानते हैं। इसके कारण है जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, देखिए प्रभुपाद जी बुद्धिमान व्यक्ति थे, क्योंकि भारत में इतने तरह तरह के परिस्थितियों में वो उलझे थे। उनको मालूम है कि कौन अच्छा है कौन बुराई है। उन्होंने बिजनेस भी की थी, फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी, इसलिए उनको सब मालूम था। जब अमेरिका गए, सैन फ्रांसिस्को गए थे न्यूयॉर्क से, तो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा बंगलो खरीदने की। तो भक्त लोगों को बोला था उन्होंने कि ये बंगलो अगर इस्कॉन का हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, तो मैं वापस आऊंगा मैं सैन फ्रांसिस्को से, लेकिन आने के पहले आप लोग इसको कुछ ना कुछ करके खरीद लो, आप ये बंगलो को कितना अच्छा है, इधर इस्कॉन सेंटर बनाएंगे, हम केंद्र बनाएंगे, ऐसे बोले थे। तो भक्त लोग बहुत परिश्रम कर रहे थे, उन्होंने इकट्ठा किया था लगभग $10,000 इकट्ठा किया था, लेकिन वो बिल्डिंग का वो बहुत महंगा था, वो $1,00,000 था, वो 10 गुना ज्यादा था। तो भक्त लोगों ने सोचा कि हम कैसे खरीदेंगे इतना महंगा, तो आपस में चर्चा कर रहे थे। एक दिन उनको मिला, एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था मिस्टर प्राइस नाम का व्यक्ति। वो आया भक्तों के पास, बोला कि आप लोग चिंता मत करो, मुझे आप लोग बहुत पसंद है, मुझे भारत के संस्कृति जो है उसके ऊपर बहुत मुझे आदर है मुझे, और आप लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हो, भक्ति करते हो, सुबह उठते हो, आप लोगों के चरित्र देखकर मैं इतना प्रभावित हो गया, आप लोग इतने अच्छे हो, ऐसे वो गुणगान कर रहा था वो मिस्टर प्राइस। वो एकदम परफेक्ट जेंटलमैन था, सज्जन था वो, ऐसे व्यक्ति। तो भक्त लोग खुश हो गए, लगता है कि वो कोई राइस परिवार का आदमी है, हमको मदद करने के लिए आया है। तो प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे एक आदमी मिला है हमें, लगता है कि ये हमें ये बिल्डिंग दिलवा देगा। और मिस्टर प्राइस बोल रहा था कि आप लोग इतना अच्छा भगवान की सेवा करते हो, मुझे इच्छा है कि आपको एक मूवी प्रोजेक्टर दान में देने की इच्छा है, आपको भविष्य में मैं दूंगा आपको, ऐसे बोला था उसने। और बोला कि ये बिल्डिंग जो आप इच्छा करते हो खरीदने के लिए, मेरे पॉकेट से भी मैं कुछ पैसा डालना चाहता हूँ आपकी मदद के लिए। मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ पैसे लेकर, तो मैं मरने के पहले कुछ अच्छा काम करे आप लोगों के लिए, आप लोग धार्मिक लोग हो तो मैं भी थोड़ा पैसा डाल सकता हूँ, हो सकता है मैं $30,000-40,000 आपको दे सकता हूँ, ऐसे मैं भी सोच रहा हूँ उसके बारे में, ऐसे बोल रहा था प्राइस। तो भक्त लोग बहुत खुश हो गए, तो प्रभुपाद जी के पास गए, बोले कि प्रभुपाद जी इतना सज्जन आदमी है, एक बार हमें उनके घर में भी बुलाया था, हमको जूस पिलाया और हरेक भक्त को प्रशंसा की। तो उसने बोला कि हाय ग्रीव प्रभु, आप जो बैक टू गार्डन मैगजीन लाते हैं ये दुनिया के सब मैगजीन में बेस्ट मैगजीन है, इससे बढ़कर कोई मैगजीन नहीं है, ऐसे उसने प्रशंसा की। ऐसे हरेक भक्त को उन्होंने प्रशंसा की, ऐसे ब्रह्मानंद रणछोड़ प्रभु, ऐसे अलग अलग भक्तों को उन्होंने प्रशंसा की। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है मैं मिलता हूँ उनसे, उनको लेके आओ। तो उन्होंने लेके आया, तो मिस्टर प्राइस जब प्रभुपाद स्वामी को देखा, पहले बोला मिस्टर एक्सलेंसी, ऐसे बोला उन्होंने। प्रभुपाद जी को तुरंत शंका आ गई उसके ऊपर। बाद में प्रभुपाद ने बोला भक्तों को, ये आदमी बहुत चालू दिखता है, मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है, आप लोग सावधानी से आगे जाओ, इसको एक भी पैसा मत देना, सावधान, प्रभुपाद ने बोला था ऐसे। तो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को जाने के बाद भक्त लोगों के पास मिस्टर प्राइस आया था और बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा धनी डोनर मिला है जो ये बिल्डिंग को आपको फ्री में देना चाहता है, ऐसे बोला, आपको अपने पैसे डालकर, मिस्टर हॉल नाम के है, वो पैसा डालकर आपको फ्री में देने के लिए इच्छा है इसको, ऐसे बोला। सब भक्त लोग कूद पड़े हुए, लेकिन मिस्टर प्राइस बोला कि लेकिन वो आदमी को अभी तक मैंने पूरा कन्विंस नहीं किया, उसको कन्विंस करने के लिए मुझे $1,000 दो, तो थोड़ा पेपर वर्क के लिए ये सब करने के लिए मुझे थोड़ा पैसा दो, तो मैं उससे काम करूंगा और जो भी बचता मैं वापस दे दूंगा। तो $1,000 दिया भक्तों ने उसको। तो उसके बाद प्रभुपाद जी को बोला उन्होंने कि मिस्टर प्राइस इस तरह एक आदमी को मिला है, वो इस्कॉन के लिए डोनेशन देने के लिए तैयार है। प्रभुपाद प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा है, बात तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि पहले पहले तुम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी बोले थे। उसके बाद ही तुम जो भी करते हो कर, लेकिन पैसा उसका एक भी मत दो, क्योंकि वो तो डोनर है, वो देगा वो। लेकिन बाद में एक बार ये मिस्टर प्राइस बोला भक्तों को कि आप लोगों को $5,000 देना पड़ेगा आपको। उसको मालूम था कि भक्तों के पास $10,000 है, किसी भक्त ने बोल दिया उसको हमारे पास $10,000 है। तो उसने सोचा कि आप लोग $5,000 दो, बाकी $95,000 मैं अरेंज करूंगा मिस्टर हाल के द्वारा, ऐसे बोला उसने। तो भक्त लोगों ने सोचा कि देखो कितना भगवान की कृपा है, हम पांच भरेंगे और वो 95 भरेगा, कितना अच्छा हो गया। तो प्रभुपाद जी को पूछा था उन्होंने, प्रभुपाद बोला कि ठीक है तुम $5,000 दो, लेकिन मिस्टर हाल के नाम में मत दो, जिस व्यक्ति का बिल्डिंग है उसके नाम में दो। अगर मिस्टर हाल के पास इतना पैसा है तो उसके पास ये $5,000 देने की क्या मतलब है, वो 95 देगा तुम 5 दो, ऐसे बोले थे प्रभुपाद ने। लेकिन 5 किसको मत दो, जो डोनर है मान मिस्टर हाल उसको मत दो, ऐसे प्रभुपाद जी बोले थे। तो भक्त लोगों को ये लेके गया है मिस्टर प्राइस बड़े बिल्डिंग में लेके गया, जैसे आप शॉपिंग मॉल देखते हो ऐसे ही बड़े बिल्डिंग में। उधर देखा मिस्टर हाल बैठे थे, उसका इतना फोन था, 4-5 फोन था, फोन कर रहा था वो, बहुत बिजी आदमी था वो। तो इन्होंने परिचय कराया भक्तों को, भक्तों लोगों को लगा कि हम तो गरीब हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम धोती कुर्ता पहने, हम क्या है, हमारे पास ये पैसा भी ज्यादा नहीं है, ये बड़ा डोनर है, हमें दान देने वाला है इस्कॉन के लिए। तो उस समय मिस्टर प्राइस ने बोला कि $5,000 मिस्टर हाल के नाम में दो, ऐसे बोला उन्होंने। तो एक भक्त नाम नहीं बोलेगा मैं उसका, उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने $5,000 लिख दिया और भक्त लोगों ने उनको डांटा, तुमने क्यों ऐसे दिया $5,000 उसके नाम में। तो उन्होंने बोला कि देखो इतने बड़े आदमी के सामने आए हैं, अगर हम बोलेंगे कि हम डोनर आपको देने के बदले हम ओनर को देंगे, तो वो सोचेगा कि अरे आप लोगों को मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं, मैं तो $95,000 देने वाला हूँ, आप $5,000 मेरे पास नहीं दे सकते, इतना भी विश्वास नहीं मेरे ऊपर। इस तरह बोलकर वो क्या बोलेगा, अभी मैं डोनेशन नहीं दूंगा, वो क्रुद्ध हो जाएगा, तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा है कि तुम मिस्टर हाल के नाम उनके हाल नाम में दे दो, मैं दे दिया। और दूसरा कारण उसने बताया, मिस्टर प्राइस ने बोला कि आपके स्वामी जी जो आए हैं भारत से प्रभुपाद स्वामी, उनको अमेरिका का हालचाल मालूम नहीं है, ऐसे बोला उसने। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल बोलते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद के शिष्यों को प्रभुपाद के ऊपर जो विश्वास था उसको तोड़ा। उन्होंने क्या बोला, ये स्वामी जी भारत के स्वामी है, उनको अमेरिका का हालचाल क्या मालूम है, इसलिए आप लोग मैं जो बोलूंगा वो करो, मैं तुमको दिला दूंगा ये बिल्डिंग इस्कॉन के लिए, ऐसे बोला उसने। और भक्त लोगों ने भी सोचा कि शायद ये जो बोल रहा है वो सही बात है, ऐसा सोचकर दे दिया। तो देने के बाद जब वो बिल्डिंग के बाहर आए वो लोग, मिस्टर प्राइस का कलर रंग बदल गया उसका। उसने बोला कि आप लोगों को $20,000 भरना पड़ेगा, बाकी $80,000 मिस्टर हाल देंगे, ऐसे बोला उसने। तो भक्त लोग बोले कि हम किधर जाएंगे पैसा के लिए। तो हाल बोला कि अभी देखो ये महीने में एक ही हफ्ता बचा है, एक हफ्ते के अंदर आपको $20,000 देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो ये बिल्डिंग भी गया, आपका डिपॉजिट भी गया, ऐसे बोल दिया। तो वो प्रभुपाद जी को लिखे, लेटर लिखा उन्होंने प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा हो गया। एक्चुअली फोन किया उन्होंने पहले प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कुछ पैसा दिया, वो बोले प्रभुपाद जी हमने दिया है। तो किसको दिया, किसके नाम में दिया, तो भक्त लोगों ने बोला मिस्टर हाल के नाम में दिया। प्रभुपाद जी फोन रख दिया नीचे धाड़ करके, कितना बड़ा बेवकूफी किया आप लोगों ने। तो वापस भक्त लोगों ने लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी सॉरी सॉरी हमने गलती कर दिया, ये मिस्टर प्राइस बड़ा है धोखा धोखीबाजी, क्या बोलते हैं धोखाबाजी बोलते हैं, धोखाबाजी है, तो अभी हमें समझ में आ गया, आप माफ कर दीजिए हमें। तो प्रभुपाद जी एक लेटर लिखे उनको भक्तों को, देखो इतना कठोर परिश्रम करके तुमने पैसा कमाया भगवान के लिए ये $10,000, अभी उसमें $5,000 को बैठा आप लोगों ने, क्यों, आपकी मूर्खता के कारण। तो बोले कि भक्तों को कभी ऐसे धोखा खाना नहीं चाहिए, और दुनिया में जो लोग सज्जन के समान दिखाई देते हैं उनके ऊपर विश्वास मत करो। अगर भगवान का भक्त कोई नहीं है तो जितना भी वो सज्जन से सज्जन हो वो कभी भी वो धोखा दे सकता है। इस तरह बोलकर भगवान जी एक श्लोक लिखा, सब लोग दोहराइए, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति दावतो बहिर। ये श्लोक लिखकर प्रभुपाद जी अनुवाद लिखा, बोला उन्होंने भगवान के भक्त जो हैं वो लोगों के शरीर में देख सकते हैं कि भगवान के सब दिव्य गुण आ जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो नहीं है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, भगवान हरि का भक्त कोई नहीं है, उसके अंदर कैसे अच्छे गुण हो सकता है। आप लोग देखेंगे आपके ऑफिसों में, आपके घर के आजूबाजू में कुछ कुछ लोग नास्तिक होते हैं लेकिन उनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, वो बहुत नम्र हैं, वो क्रोध नहीं करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन ये सब गुण जो होता है ये सब दिखावा है, क्योंकि वो लोग भगवान को मानते नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, कभी भी ऐसे व्यक्ति कुछ भी बड़ा गलती कर सकता है उसके जीवन में, क्योंकि उसको नेक और ईमानदार रखने के कारण ही नहीं है, उसका लक्ष्य ही नहीं है उसका, ऐसे प्रभु जी समझाया। तो आप लोग उसके सज्जनता को देखकर आप धोखा खाया, आप लोगों ने भविष्य में आप सतर्क रहो, सावधान रहो, ऐसे प्रभु जी कथ लिखा, उनको भक्तों को डांट कर ऐसे कथ लिखा था प्रभु जी ने ऐसे। तो इस दुनिया में रहते समय सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ऐसे सनातन धर्म का एक लक्ष्य है कि सब जीव शांति से खुशी से जिए। इसलिए अब कैसे जिएंगे खुशी से शांति से, हरेक इंसान जो होता है उसको सोचना चाहिए कि सब संपत्ति भगवान का है, सब जीव भगवान के बच्चे हैं, इसलिए मुझे किसी भी जीव को धोखा देना नहीं चाहिए, अगर मैं धोखा दूंगा तो वो भगवान को धोखा देने का बराबर है, ऐसे सोचना चाहिए हर एक जीव को। अक्षर धोखा किस में देते हैं लोग, पैसे लेने में, पैसे देने में धोखा देते हैं लोग, है ना। कभी कभी कोई बोलता है आपको, आपका कोई निकट मित्र बोलता है आप गारंटियर बनो मेरे लिए, आपको मालूम है गारंटियर, तो बोलता है कि गारंटियर बनो, तो अगर आप साइन करते हैं गारंटियर के लिए तो बाद में वो आदमी गायब हो जाता है, तो किसको पकड़ा जाएगा, आपको ही पकड़ेंगे, है ना। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं सिर्फ साइन किया, सोचा कि वो अच्छा मित्र है, उसका घर भी इधर ही है, सब सोचा था, लेकिन कभी कभी लोग घर को काले करके ताले लगाकर चले जाते हैं, सालों साल वापस नहीं आते हैं, कहीं फॉरेन चले जाते हैं। तो व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सोच विचार कर आदमी को काम करना चाहिए। वो बोलेंगे आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, इतने सालों से हम मित्र हैं। तो कभी कभी दुकान में आप देखेंगे एक बोर्ड लगाते हैं, अगर आपको कर्जा चाहिए कुछ सामान खरीदने के लिए, आपके दादाजी के दादाजी को साथ में लाइए और आपके पौत्र के पौत्र को साथ में लाइए, दोनों को साथ में लाइए, तभी आपको कर्जा मिलेगा हमारे दुकान में। यू हैव हर्ड दिस, यू गो टू योर शॉप, दे हैव पुट अ बोर्ड, यू ब्रिंग द ग्रैंडफादर ऑफ योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन ऑफ योर ग्रैंडसन, बोथ ऑफ देम विद यू, देन वी विल गिव यू डेट। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, आपको नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा बोलने के बदले ऐसे बोलते हैं, ऐसे मुड़कर बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है, पैसे के लेने देने में, जमीन के लेने देने में आदमी को बुद्धिमान रहना चाहिए जरूर, उसके लिए थोड़ा बुद्धिमत्ता की जरूरत है। जैसे नंद महाराज प्रभा जी बोलते हैं कि जब वासुदेव के पास आए थे, अच्छा वासुदेव के घर नहीं गए थे नंद बाबा, नंद बाबा कंस के राज्य में आए थे, लेकिन वो कर पूरे करने के लिए आए थे। उन्होंने क्या सोचा था, आने वाले में 3-4 साल के लिए मैं कर अभी रकम अभी दे दूं मैं, क्योंकि अगर कंस के कोई मिनिस्टर लोग वृंदावन में आएंगे और मेरे बच्चे को देख लेंगे, कंस तो इतना क्रूर राजा है, अपने ही बच्चों को मारा है उसने, एक के बाद एक के बाद एक मारा है उसने, तो मेरे बच्चे को भी मारेगा वो, हो सकता है कि मारेगा, अच्छा कि 3-4 साल के लिए कम से कम आदमी मेरे वृंदावन में कभी ना आए, इस तरह सोचकर वो कर देने के लिए गए थे कंस के पास, कंस के राज्य में। इतने में क्या हुआ, वसुदेव थे उधर लेकिन वसुदेव के घर में नहीं गए, क्यों, क्योंकि अगर मैं वसुदेव के घर में जाऊंगा तो न्यूज चला जाएगा, जासूस लोग जाकर बोल देंगे कम से कम कि ये आए थे उनके घर में, कम से घर में ऐसे पता चल जाएगा। तो हो सकता है कम से कम शंका होगा, वसुदेव ने अपने पुत्र को नंदा बाबा के घर में भेज दिया है ऐसे, इसलिए उनके घर में भी नहीं गए, तो सिर्फ राजा के पास गए थे और कर पूरे करने के बाद वापस लौट रहे थे। तो बीच में वसुदेव जी आ गए, तो वसुदेव ने बोला, सीक्रेटली बोला उनको, नंदा बाबा, नंदा नंद महाराज देखो, वृंदावन में हो सकता है कि कोई राक्षस कोई आकर तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए कोई आने की संभावना है, तुम जाकर जल्दी जाओ, वापस जाओ, इतने दिन वृंदावन के बाहर मत आओ, ऐसे बोला उन्होंने। तो नंदा बाबा वापस गए, उस समय घटना घटी थी पुतना की, है ना, पुतना की घटना घटी थी। तो उनको तुरंत आश्चर्य हुआ कि वे वसुदेव को कैसे पता चला कि राक्षस राक्षस कोई आने वाले हैं इधर, हो सकता है कि उनको कुछ ज्योतिष मालूम है, ऐसे सोचा नंद बाबा ने। क्या वसुदेव को ज्योतिष मालूम है? कुछ ज्योतिष मालूम नहीं है उनको, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ये नंद बाबा वैश्य थे, वो बहुत सिंपल थे, सिंपल का मतलब सरल थे वो बहुत, लेकिन वसुदेव क्षत्रिय थे, इसलिए उनके अंदर कुछ बुद्धिमत्ता थी, क्या बोलते हैं उसको, षड्यंत्र रचाने की ये सब मालूम थी, क्योंकि क्षत्रिय को उसका मालूम होता है। देखिए युधिष्ठिर महाराज क्षत्रिय है, इसलिए आप देखते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने बोला युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर पंच पांडवों को मैं वाराणावट में शिवजी की पूजा में भेजना चाहता हूँ, आप लोग जाओ और आनंद लूटो आप, ऐसे भेजा उन्होंने। तो युधिष्ठिर तुरंत अपने भाइयों को बुलाया, पूछा कि ये धृतराष्ट्र हमको भेज रहा है उधर वाराणावट में, लेकिन अपने 100 बच्चों को बेटों को क्यों नहीं भेज रहा है, इसका मतलब है उधर कुछ ना कुछ खतरा है हमारे लिए, ऐसे बोले कौन, युधिष्ठिर महाराज। इसका मतलब युधिष्ठिर भी साधारण व्यक्ति नहीं था, उनके अंदर भी ये ऐसे बुद्धिमत्ता थी उनके अंदर भी। तो प्रभा जी बोलते कि क्षत्रियों के अंदर ये बुद्धिमत्ता होता है, कैसे बर्ताव करना चाहिए लोगों के साथ ये सब। तो गिरिराज महाराज सुन रहे थे, वो बोले कि प्रभा जी हम कैसे बोल सकते हैं कि नंदा बाबा वैश्य हैं और वसुदेव क्षत्रिय हैं, इस तरह क्या भेदभाव हम कर सकते हैं भक्तों में। तो प्रभा बोले बोला कि ये भेदभाव करना करने को छोड़ो, लेकिन दोनों कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण को खतरा नहीं आना चाहिए, कृष्ण को बचाना चाहिए, इसलिए तुम जो भी हो लेकिन हमें कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, इसे बोले। लेकिन साथ साथ प्रभुपाद ये भी बोले कि जो भक्त बहुत सरल हैं, गिरिराज स्वामी को बोला उन्होंने, तुमको इस तरह पैसे का जमीन का हैंडल नहीं, व्यवहार हैंडल नहीं करना चाहिए तुमको, वो करने के लिए थोड़ा अलग ही दिमाग की जरूरत पड़ता है उसका, इन विषयों में, ऐसे प्रभुपाद ने समझाया। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, तमलक्ष महाराज को लगाया जब मायापुर की जमीन खरीदने के लिए, तो तमलक्ष महाराज पैसे लेकर गए। देखिए बड़े बड़े पैसे जब लेके आते हैं, लेके जाते हैं ट्रेन में कभी, तो बहुत सावधानी से सफर करना होता है, नहीं तो वो लूटा जाएगा। तो मायापुर जब गए थे, अच्छी तरह बात करके वो जमीन खरीद कर वो पेपर वगैरह लेकर वापिस आ गए। तो रात को मिडनाइट आए थे, तो प्रभुपाद के जाकर प्रभुपाद को उठाकर प्रभुपाद से मिला, प्रभुपाद के पास बोले, प्रभुपाद द मायापुर लैंड इज यूअर्स, ऐसे रख दिया उनके सामने। तभी प्रभुपाद ने तमलक्ष महाराज को आलिंगन दिया। आखिर प्रभुपाद जी साधारण तरीके से किसी को आलिंगन नहीं करते थे, ऐसे ही हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन तमलक्ष महाराज से बहुत प्रसन्न हुए प्रभुपाद जी, उनको आलिंगन करते थे ऐसे। तो इसमें बहुत बड़े निपुणता की जरूरत है, इसलिए भक्तों को आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज कभी भी कौरवों को धोखा नहीं दिया उन्होंने, कभी योजना नहीं बनाई कि मैं कौरवों को मार डालूं, कभी भी नहीं युधिष्ठिर महाराज। लेकिन जब कौरव योजना बनाया युधिष्ठिर महाराज को धोखा देने के लिए, हर धोखा से वो बच गए वो युधिष्ठिर महाराज और पांडव लोग। आप देखेंगे वाराणावट में उनको जलाने के लिए प्रयत्न किया गया, लेकिन विदुर की उपदेश से सब पंच पांडव बच गए। उसके बाद आप देखते हैं जब 12 साल होने के बाद भी दुर्योधन ने प्रयत्न किया उनको पकड़ने के लिए विराट देश में सब लोग चुप गए, पांडव लोग पकड़ नहीं पाया दुर्योधन। तो आप देखते हैं कि भीम को विष पिलाया गया, वो बच गया वो। तो पांडव लोग भी बुद्धिमान थे, वो दुर्योधन के धोखा से बच गए, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को नहीं तो कौरव को मारने के लिए प्रयत्न नहीं की। इसका मतलब नहीं, मतलब क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों को दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन धोखा खाना भी नहीं चाहिए। इतना तक बुद्धिमत्ता होना चाहिए। अगर इतना बुद्धिमत्ता नहीं है तो दूसरों से लेना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे सदुपदेश लेना चाहिए। बोला बोला नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। अगर बोला बोला है, कोई बोला बोला है, उसके पास पैसा है तो धोखा खाएगा वो, ऐसे ऐसे। तो ये कभी कभी क्या होता है, लोग पूछते हैं, अभी आप वृंदावन में जाइए, लोही बाजार है, अभी लोही बाजार में आप जाएंगे, वो दुकानदार लोग आपको बुलाते हैं, हरे कृष्णा ऐसे बोलेंगे आपको, तो आप तुरंत उसको मुड़कर देखेंगे, देखेंगे अरे हरे कृष्णा किसने बोला, वो तो सज्जन आदमी होना चाहिए क्योंकि हरे कृष्णा बोलता है। आप पास में जाइए, वो भी ऐसे ही तिलक पाना है, तिलक भी पाना है, धोती कुर्ता पाना है, हरे कृष्णा बोलता है, और आप बोलेगा कि क्योंकि आप डिस्काउंट के हैं, आपको सबसे सस्ता हम देने वाले हैं आपको, लेकिन आप किसी को मत बोलना है, सिर्फ आपके आपके लिए है। आप बोलेंगे तो दूसरे लोग भी आकर हमको बोलेंगे कि हमें कम पैसा में चाहिए, इसलिए सीक्रेट है, आपके लिए दे रहा हूँ, ऐसे बोलेगा। आप भी इधर उधर मुड़कर देकर आप ले लेंगे उसको, और आपको जाने के बाद कभी किसी भक्त को बोलो, जैसे मैं गया था जगन्नाथपुरी में, वो उधर दशावतार बेच रहे थे, वो ऐसे दिखाई दिया मानो वो वुडन कार्विंग है, टीक उड से बनाया हुआ है ऐसे। हमने पूछा कितना पैसा है, बोला 1000 रुपया, वो बोल रहा था, और धीरे धीरे कमते करके 500 तक आ गया वो। अच्छा हुआ कि मैंने खरीदा नहीं, मैंने एक भक्त को बोला कि इतना अच्छा है दशावतार, हम लेके जा सकते हैं हमारे मंदिर में, ऐसे बोल रहे थे। तो 500 से बोला कि प्रभु जी सिर्फ आप इस्कॉन से आपके लिए दे रहा हूँ, किसी को इतने कम नहीं देंगे। तो बाद में एक भक्त बोले कि ये 10 रुपए में आपको मिलेगा वो, बोला क्योंकि वो किसी ऐसे वस्तु से बनाया गया है, वो 10 रुपए में हो सकता है। बाद में मट्टी मट्टी से बनाया। तो अच्छा, इतना तक भगवान ने हमें बुद्धि दिया कि तुम्हें मालूम नहीं है, पैसा मत दो, पैसा नहीं दिया हमने। तो व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी हमने सोचा कि वो तिलक पाना है, धोती कुर्ता पाना है, जो कहा हरे कृष्ण भी बोला उसने, इसलिए हमने पैसा दे दिया है, ऐसे बोलकर आप सब वैष्णवों को निंदा नहीं कर सकते हो। बोलेंगे कि सब हरे कृष्ण वाले ऐसे ही हैं, सब लोग धोखा देने वाले हैं, धोखा खाया हमने और हम शाप देते हैं हरे कृष्ण वालों को। तो किसको किसको कोसना चाहिए, धोखा खाने वाले को कोसना चाहिए, क्योंकि वो सतर्क नहीं रहा हो, तो बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए उसको। जब इसलिए आप देख, एक्चुअली वो लोग देखते हैं कि इस्कान वाले बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे वो सोचते हैं। उनको मालूम नहीं कि हरेक इस्कान का केंद्र अलग अलग है और हरेक मंदिर के लोगों को अपने पैसे कमाना पड़ेगा, वो सब मालूम नहीं। वो देखते हैं अमेरिकी पुरुषों को, स्त्रियों को, सोचते हैं कि ये लोगों को अमेरिका से पैसा आता है, ऐसे सोचते हैं। तो इसके कारण वो, अगर आप देखेंगे कि आप इस्कान के, अगर आपको पूछा गया, पूछेगा कोई क्या आप इस्कान के, आप बोलना चाहिए नहीं है, तभी आपको सस्ता मिलेगा। आपको आप बोलेंगे हम इस्कान के हैं तो आपको धोखा देगा वो वृंदावन में, आप देखते हैं इसे। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शटोशाट्यम, शटोशाट्यम चाणक्य बोलता है, क्या बोलता है, जो धोखा देता है उसको धोखा देना चाहिए। तो बोलते हैं कि ऐसे एक श्लोक आता है चाणक्य के, काला नाम कंटका नाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया मुखानन उपानन मुखभंगो वा दूरस्थो वा विसर्जनम। चाणक्य बोलते हैं कि अगर तुम जंगल में जाते समय तुम्हें कांटा प्राप्त होता है, तो कांटा छुपता है तुम्हारे पांव में, दर्द होता है तुमको, तो क्या करना चाहिए इसे कांटे को, या तो उसके मुख को तोड़ दो, नहीं तो उसको दूर फेंक दो, जिधर पथिक लोग चलेंगे नहीं ऐसे स्थान पर उसको छोड़ दो। इस तरह अगर कोई कलह व्यक्ति है, धोखा देने वाला व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, या तो क्रश करो, उसको एक्सपोज करो, उसको मारो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो क्या करो, उसको दूर फेंक दो, उसको उससे संग मत करो, उसके संग में बताओ पास में मत आओ, ऐसे चाणक्य बताता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त लोगों को कभी कभी ऐसे बुद्धिमान होना होता है अपने कार्य को पूर्ति करने के लिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी देते हैं बलम तस्य बुद्धि यस्य बलम तस्य, इसके लिए ये कहानी बोलते हैं जो आपको अच्छी तरह मालूम है। एक बड़ा शेर था जंगल में, तो हर दिन एक एक जानवर को खाता था, तो उस दिन टर्न किसका था, एक कबूतर का था, तो कबूतर ने क्या किया, थोड़ा लेट आ गया, आ पहुंचा वो। तो शेर ने पूछा कि क्यों तुम इतना देरी से आया, वो चिल्ला पड़ा उसके ऊपर, क्रोध क्रोधित हो गया। तो वो तो कबूतर ने बोला, कबूतर बोले ना, खरगोश, खरगोश बोले, खरगोश, वो खरगोश बोला कि आप तो जंगल का राजा हो, लेकिन आते समय मैंने एक बड़ा कुआं, कुआं नहीं है क्या, कुआं बोलते हैं, तालाब नहीं है, कुआं, कुआं है, ये कुआं था, कुआं के अंदर आप जैसे एक बहुत बड़ा शेर को देखा मैंने, लगता है कि वो आपसे भी बड़ा है, इतना बड़ा आवाज करके मुझे रोक दिया, वो जाने नहीं दिया मुझे, है अभी उसको मैं बोलकर आया हूं आपके पास, लगता है कि वो आपसे भी बड़ा है। तो ये सुनकर ये शेर बहुत क्रोधित हो गया, बोला कुपित हो गया, बोला कि मुझे लेके जाओ उसके पास, इन जंगल में ऐसा कैसा व्यक्ति है मेरे से भी बड़ा, ऐसे बोलकर गया। वो कुआं में देखा उसने दूसरे शेर को, पानी में अपने ही प्रतिबिंब को देखा उसने, तो आवाज आवाज किया, वो भी आवाज कर रहा था। तो शेर मूर्ख शेर था, वो कूद पड़ा अंदर और पानी में कूद पड़ा और मर गया, और बच गया हमारा खरगोश। तो प्रभा जी बोलते हैं कि ये शरीर तो छोटा है खरगोश का, लेकिन वो बुद्धिमत्ता ज्यादा है उसका, ऐसे बोलते हैं। तो शटोशाट्यम, जो उसको मारने वाला व्यक्ति उसको मार दिया उसने, बुद्धिमत्ता है, ऐसे प्रभु जी बताते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब जेल खाने के अंदर थे, तभी मुसलमान राजा था जो उसको जेल में डाला था, आजीवन उनको जेल में ही खाना पड़ेगा, जेल में ही मरना पड़ेगा उनको, ऐसी स्थिति में डाला था उन्होंने। तो और जेल कीपर भी मुसलमान था, बड़ा राजा था, बड़ा दाढ़ी वाला था। तो इन्होंने क्या बोला, सनातन गोस्वामी ने, उस टाइम राजा बाहर गया था कहीं, तो उन्होंने जेल कीपर को बोला कि देखो हरेक मनुष्य को मक्का जाना चाहिए अपने जीवन में एक बार, तो मैं भी मक्का मदीना जाना चाहता हूँ, और आप जो हो, आप जितना बड़े दाढ़ी वाली हो, कितना बड़ा आप फकीर हो, क्या बोला, जिंदा पीर हो, ऐसा बोला उसने, आप बड़ा जिंदा पीर हो और आप भी अल्लाह को मानने वाला हो, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, तो मुझे मक्का जाना है, आप कृपया मुझे छोड़ दो। इस तरह बोलकर थोड़ा पैसा दिया उनके हाथ में, सोने के सिक्के दिए। तो उसके हाथ में सोने के सिक्के आने के बाद वो खुश हो गया वो, और उसके आंखों में आंसू निकलने लगे, आंसू बहकर दाढ़ी में आंसू बहने लगे। तो बोला कि तुम इतना मीठा बात करते हो, इतना मीठा बात करते हो, तुमको छोड़ने की इच्छा मुझे भी है, लेकिन मेरा सर खतरे में है, राजा वापस आएगा, मुझे पकड़ेगा, बोलेगा तुमने सनातन को कैसे छोड़ा तुमने, इसलिए मुझे मार डालेगा, मेरा सर काट डालेगा वो, मैं कैसे बचूं, तू कुछ उपाय बताओ। तो सनातन ने बोला कि देखो, राजा को बोलो कि मैं नदी के बाजू में विश्वास करने के लिए तुमने मुझे छोड़ा था ये जंजीरों के साथ साथ, लेकिन मैं नदी में कूद पड़ा और आत्महत्या कर लिया, ऐसे बोल दो राजा को, और राजा भी मान लेगा कि शायद मर गया, ऐसे सोचेगा। तो ऐसे बोलकर और भी सोने का सिक्का दिया उनके हाथ में, तो वो खुश हो गया, वो जेल कीपर वो कॉल दिया और सनातन गोस्वामी भाग गए उधर से क्षेत्र महाप्रभु के पास। तो ये कितना बुद्धिमत्ता है। और जाते समय उनके साथ साथ एक ईशान, ईशान नाम का एक व्यक्ति को लेके गए वो, तो ईशान उनका नौकर था। तो एक लॉज में ठहरे वो, वो लॉज में रात को ठहरते समय देखा कि वो लॉज कीपर जो था आदमी इतना अच्छी तरह बर्ताव कर रहा था सनातन से, प्रेम प्रेम से, प्रेम से बात कर रहा था। सनातन तो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर का मतलब है उसको बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसने देखा कि इतना प्रेम क्यों दिखा रहा है, अति भक्ति चोरे लक्षण ऐसा बोला जाता है। आपको मालूम है कहानी, एक बिल्ली था जो ऐसे भस्म पहन लिया अपने शरीर में और रुद्राक्ष पहन लिया, हाथ में कमंडलू ले लिया, और सब चूहे देख रहे थे, ये कैसे हमारे बिल्ली ऐसे बड़े ऋषि बन गए अभी है। और बोला कि अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पाप कर्मों को त्याग कर मैं गंगा में जाऊंगा, लेकिन हर एक दिन आप एक एक चूहा मेरे हाथ पकड़ कर लेके जाओ नदी तक, छोड़ दो और मैं उधर बैठ कर तपस्या करूंगा बोला। लेकिन हर दिन ऐसे चूहे कर रहे थे, तो एक चूहा बुद्धिमान था, वो बोला कि अरे हमारे चूहों का संख्या कम होता जा रहा है, किधर किधर जा रहे हैं सब चूहे, और समझ गए कि वो बिल्ली का रहा है, उधर लेके जाकर उधर का रहा है नदी के पास, समझ गया इसे। तो ऐसे कभी कभी अति भक्ति चोरे लक्षण बोला जाता है, कभी कभी दिखावा करते हैं लोग ऐसे। तो सनातन को भी डाउट हुआ कि ये इतना प्रेम दिख रहा है, इसके अंदर कुछ होना चाहिए, ऐसे सोचा उन्होंने, शंका किया। तो तुरंत अपने नौकर को पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के हैं? उसने बोला हाँ मेरे पास 7 सिक्के हैं, दे दो बोला। लेकर टेबल में रख दिया, बोला इनकीपर को, राजकीपर को, ये ले लो तुम। तो बोला सनातन मैं तुमको माल डालने वाला था आज रात को ये सोने को चोरी करने के लिए तुमसे, लेकिन अभी तुम पैसा दे दिया सोने का सिक्का, इसलिए मैं तुमको छोड़ दूंगा। तुम सोने का सिक्का भी रख लो, मैं तुमको भी छोड़ देता हूँ, मैं मारूंगा नहीं बोला। लेकिन सनातन ने बोला नहीं नहीं, जो सोना हमारा मरण का कारण बन सकता है तुम ही रख लो, नहीं चाहिए मुझे, दे दिया उनको। उधर से निकल गए वो, लेकिन ईशान के चेहरे को देखा उन्होंने, उनके चेहरे में कुछ ऐसे दिखाई दिया, उनको लगा कि कुछ चंचलता है उसके अंदर। उसको उन्होंने पूछा ईशान को, ईशान तुम्हारे पास और कुछ सोने के सिक्के हैं? पहले तो नहीं बोला था, बाद में बोला हाँ एक रखा हूं मेरे लिए। बोला कि तुम अभी वापस लौटो, तो तुम मेरे साथ भ्रमण करने के लिए तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि ये साधु जो है साधु के पास कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि ने जब नारद मुनि को पकड़ा था जंगल में, नारद मुनि ने बोला कि हे चोर, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए तुमको कृष्ण के जोड़कर, सिर्फ भगवान को प्रदान कर सकता हूं मैं, बस हाथ पैर काली है, सब कुछ पॉकेट सब काली है, कुछ नहीं है बोला उन्होंने। अगर चाहे तो तुमको भक्ति प्रदान करूंगा बस। तो इसलिए सनातन ऐसे गए उसके बाद। तो सनातन की बुद्धिमत्ता की गुणगान किया गया है इधर, हम देखते हैं। तो सनातन गोस्वामी ऐसे पॉलिटिक्स कभी नहीं किया भक्तों के समूह में। भक्तों के समूह में आने के बाद आप देखेंगे सनातन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने कभी कभी किसी और भक्त को धोखा नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने धोखा नहीं खाया। आप देखेंगे भक्तों के अंदर वैष्णव के रूप में वो रहते हैं, आप देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रसंग में जो आता है, धृतराष्ट्र ने क्या किया है, अपने सेक्रेटरी को बोले बिना वो चले गए। संजय के साथ इतना निकट रिश्ता था उनका। कभी कभी भारत में हम देखते हैं कोई जमींदार है, उसके पास कोई नौकर चाकर है, लेकिन नौकर का रिश्ता जमींदार के साथ इतना निकट है, वो घर का एक सदस्य बन जाता है, वो इतना निकट हो जाता है। घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो नौकर को भी इतना प्रसन्नता होता है उससे, तो नौकर उनके बेटे के समान हो जाता है। ऐसे ही थे संजय, किसके? धृतराष्ट्र के। फिर भी धृतराष्ट्र उनको बोले बिना जंगल चले गए, किसके साथ? विदुर जी के साथ। कारण क्या है? अगर किसी को वानप्रस्थ लेना है, सब घर वालों को बुलाओ और बैठो उनके साथ, बोलो कि मुझे वानप्रस्थ लेना है, बेटो बच्चे सबको बोलो, वो रो पड़ेंगे, बोलेंगे अभी नहीं, कुछ और 2 साल रहिए, थोड़ा बच्चा बड़े हो जाए उसके बाद जा सकते हैं, ऐसे बोलेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं आपको। और अनेक लोगों के पास वैराग्य भी नहीं है ऐसे वानप्रस्थ में जाने के लिए भी। तो एक आदमी था, तो सुबह मैंने सुना, मेरे राज से प्रभु से सुना, वो बता रहे थे कि सुबह उनके सास बोलते हैं, नहीं सास नहीं, उनके डॉटर इन लॉ क्या बोलते हैं, बहू, बहू, बहू चाय बनाकर लेके आई उनको देने के लिए। वो तो इसी चेयर में लेटे थे, चाय दे दिया तो उन्होंने पिया, बहुत ना उसमें शक्कर डाला था उसमें। उन्होंने बोला कि क्या तुमको मालूम नहीं बेटी, देखो इसमें शक्कर इतना डाला है, तुम शक्कर के बिना चाहिए मुझे, अलग चाय बना कर दो। वो चिल्ला पड़ी, बोला कि क्या हम चाय बनाएंगे शक्कर के बिना और चाय बनाएंगे शक्कर के साथ, दो दो चाय कौन कर सकता है इधर, मैं ये सब नहीं करके दूंगी, ऐसे डांटा उन्होंने। तो ये इनको बहुत बुरा लगा, अपने बेटे को बुलाया, देखो बेटा तुम्हारी पत्नी मुझे डांटती है, ऐसे घर में जिधर मेरा सम्मान नहीं है मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा, बोला उन्होंने। अभी मैं तुरंत वानप्रस्थ लेकर जा रहा हूँ। चले गए सुबह, अब शाम को आ गए वापस आने के बाद, तो वो सब देख रहे थे उनको आश्चर्य से। तो बहू ने पूछा क्या वापस लौट गए एक ही दिन में, सुबह गए शाम को आ गए? वो बोले कि मेरा पौत्र, बोलते हैं पोता, पोता पोता जो है उसको हर दिन मुझे वॉकिंग के लिए लेके जाना पड़ता है, मेरे बिना कौन वॉकिंग के लिए लेके जाएगा उसको, इसलिए मैं वापस आ गया, बोला उन्होंने। तो लोगों के अंदर ज्यादा वैराग्य नहीं है। तो अगर जाना असली रूप में, अगर किसी को वैराग्य के साथ जाना है, इसलिए आप देखते हैं भगवान कृष्ण अपने स्वधाम जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, कुंती और 4 पांडव भाई, उनको कुछ भी नहीं बोलते हैं, कषाय कपड़े पहन लेते हैं, हाथ में एक लाठी ले लेते हैं और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं, मौन रखते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, ऐसे चल पड़ते हैं। और उनको देखकर बाकी भाई भी पीछे पीछे जाते हैं उनके पीछे। और द्रौपदी कुंज क्या करते हैं वो समझ गए, अभी ये लोग घर छोड़कर जा रहे हैं भगवान के पास जा रहे हैं अभी, तो वो दोनों ध्यान में बैठकर भगवान की ध्यान किया, कृष्ण की ध्यान, और वो ध्यान में अपने शरीर त्याग दिया उन्होंने, कुंती और द्रौपदी भी ऐसे भगवान के दिव्य स्मरण में। तो इस तरह धृतराष्ट्र ने सोचा कि अगर मैं युधिष्ठिर को बोलूंगा कि मैं राजमहल छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ, वो छोड़ेगा नहीं मुझे, वो बोलेगा नहीं नहीं अब और कुछ साल के लिए रहिए हमारे साथ, इसलिए वो चले गए, अपने सर्वेंट को भी बोला नहीं। ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी ऐसे। देखिए भगवान जैसे महान भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी ऐसे धोखा दिया है, जैसे बुद्ध ने भी छोड़कर गया है, लेकिन ऐसे महान भक्तों को कोई नकल नहीं कर सकता। बुद्ध तो परम भगवान थे खुद। तो शंकराचार्य ने क्या किया, शंकराचार्य ने अपनी माँ को बोला कि माता मुझे संन्यास लेने की इच्छा है, 5 उम्र में बोला उन्होंने। माता ने बोला बच्चे मेरे लिए तो तुम ही हो, तुमको छोड़कर मैं कैसे इस दुनिया में जी सकती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ेंगे तुमको, मेरे अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेंगे तुमको, ऐसे बोला उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, वो तो शिव जी थे, शंकर भगवान थे, तो एक दिन ऐसे गंगा में नहाने के लिए गए थे, माता के साथ ही गए थे, तो दोनों गए थे ऐसे पानी में कूद पड़े, वो स्विमिंग करने लगे, स्विमिंग करके करके नदी के बीच में आ गए, तुरंत एक मगरमच्छ पकड़ा उनके पांव को जोर से, और वो माँ 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 चिल्लाने लगे वो जोर से, और माता जी तो नहा रही थी तट के पास, उसको देखकर वो रो पड़ी, आसपास में कोई नहीं थे, तो वो सोचे कि कैसे मेरे बच्चे को बचाऊं। तो तभी शंकर ने बोला कि अगर आप मुझे संन्यास लेने के लिए पाबंद नहीं डालेगी, मुझे अनुमति देगी, तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, आप हाँ बोलो, ऐसे बोला। माता ने बोला तुम जो भी करना करो लेकिन तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, तुम संन्यास लें तो संन्यास भी लो लेकिन जिंदा बच्चे मेरे पास वापस आ जाओ, बोला। तुरंत वो मगरमच्छ छोड़ दिया और चला गया वो, और वापस आ गए, तुरंत उसी दिन वो संन्यास ले लिया। उसके बाद ऐसे उन्होंने एक ट्रिक किया, क्या बोलते हैं ट्रिक, चाला क्या शंकर जी। एक्चुअली जो अभी वर्णाश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं उसके बाद अगर शादी करते हैं अग्निवलम, अग्निवलम का मतलब है अग्नि के प्रदक्षिणा करके, अगर किसी के स्त्री के हाथ पकड़कर ऐसा अग्निवल लाते हैं, उनको उनका कर्तव्य पड़ता है कि जीवन भर उनकी रक्षा करे। इसलिए 50 साल के बाद वानप्रस्थ लेते समय भी बीवी साथ में जाती है, जैसे धृतराष्ट्र जा रहे हैं उनके साथ साथ गांधारी भी जा रही है। तो 75 साल के बाद सन्यास है, उसके बाद 75 साल 80 साल के बाद सन्यास आता है उसके बाद। तो ये वानप्रस्थ के आश्रम में चले गए धृतराष्ट्र जी ऐसे। तो एक ओर से देखा जाए तो ये धोखा है, दूसरी ओर से देखा जाए तो ये धोखा नहीं है, क्योंकि दिव्य कारण के लिए किया गया है, ऐसे बताते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति हैं उनको कोई भी धोखा नहीं दे सकता भगवान को। जैसे आपको मालूम है राहु और केतु बैठ गए समुद्र मंथन के बाद दूसरे पक्ष में देवताओं के साइड में, है ना, जब वो अमृत लेकर पीने वाले थे उन्होंने एक सुदर्शन चक्र लिया ना मोहिनी मूर्ति ने, और राहु के सर काट डाला तुरंत। भगवान से कोई बच नहीं सकते हैं ऐसे। पूतना राक्षसी गई वृंदावन में भगवान को धोखा देने के लिए। एक्चुअली पूतना राक्षसी बलि महाराज की बहन थी, पिछले जन्म में उनकी इच्छा हुई कि ये सुंदर ब्राह्मण लड़का जो है, जो एक छत्री लिया है हाथ में और इनका चेहरा इतना तेजस्वी है, ब्रह्म तेजस उसमें है, और जब वो आ गए वो सभा में सब उठ गए उनको देखकर, वामन देव को देखकर। तो उनके बलि महाराज की बहन के हृदय में इच्छा हुई कि इसको मैं दूध पिलाऊं, लेकिन जब वामन देव त्रिविक्रम बन गए, बहुत ऊंचा रूप लेकर बलि महाराज के सब जमीन को छीन लिया उन्होंने पूरा, तभी ये बलि महाराज की बहन ज्योति वो बहुत क्रोधित हो गई, उत्तेजित हो गई। उसने बोला कि ये ब्राह्मण लड़के को मैं मार डालूं, ऐसा सोचा उन्होंने, इसलिए अगले जन्म में वो पुत्र बनकर आई। इसलिए पुतना की इच्छा हुई कि मैं मारूं कृष्ण को। लेकिन वो गई वृंदावन में अच्छी तरह सजाकर अपने को, मानो लक्ष्मी आ रही है वृंदावन के अंदर, हाथ में एक सुंदर कमल भी ले लिया, ऐसे करते हुए आ गई वृंदावन के अंदर। यशोदा मैया ने देखा उसके सुंदर स्वरूप को, देखकर सोचा कि मेरा लड़का जो है लाला, उसको मैंने भी इतना प्रेम नहीं दिया जितना ये स्त्री दे सकती है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कृष्ण को उसके गोद में, तुम ले लो ऐसे। लेकिन सब गोपियां इधर उधर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने स्तन में जहर मिलाकर उस दूध को पिलाया। तो देखिए, इस दुनिया में कभी नहीं सुना हमने कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार सकता है अपने वोटों से। भगवान जब अपने वोटों से स्तनपान करने लगे, विष के साथ साथ भगवान ने उसकी जान को भी पी लिया। तो पूतना तेजी से बाहर निकल गई घर से, वो खेती में इतना लंबा शरीर हो गया उसका, 12 मील का लंबा शरीर हो गया, और चिल्लाने लगी जोर जोर से, छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, चिल्लाने लगी वो। छोड़ नहीं रहते भगवान, क्योंकि भगवान किसको पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं वो। जैसे हम सबको पकड़ कर रखे हैं भगवान, ऐसे ही किसी को भी पकड़ते हैं भगवान, उसको छोड़ते नहीं। तो चिल्ला रही थी, लेकिन भगवान अपने ओंटों से स्तनपान कर रहे थे और हाथों से उसके स्तन को मार रहे थे और पांव से भी धक्का दे रहे थे उसको, और इतना दर्द हो रहा था कोई भी समझ नहीं सकता कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतना दर्द दे सकता है किसी को। तो अब देखिए, भगवान को धोखा देने के लिए आई, लेकिन धोखा काई तो पूतना। इसलिए भगवान बताते हैं, द्यूतम चलयताम अस्मि, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अगर कोई मुझे धोखा देने के लिए ट्राई करता मैं उसको बड़ा धोखा दूंगा। जैसे कर्ण जब युद्ध भूमि में अपने पहिया निकाल रहा था, रथ का, है ना, उसने बोला अर्जुन को, हे अर्जुन अभी बाण मारो मत मुझे, अगर तुम क्षत्रिय हो तो अभी मुझे मत मारना, क्योंकि मैं पहिये को निकाल रहा हूँ। तो भगवान ने बोला कि हे कर्ण, तुम क्या अभी धर्म की बात कर रहे हो, तुम जब पंच पांडव ताश खेल रहे थे इनके साथ, दुर्योधन के साथ, तभी जब वो खो बैठे, तभी कौन बोला कि द्रौपदी को सभा में लेके आकर उसका वस्त्र हरण करो, तुमने बोला, तुमने सुझाव दिया दुर्योधन को। जब पंच पांडव हार गए, किसने बोला कि उनको जंगल में भगा दो, तुमने उपदेश दिया जंगल में भगा दो। और जब पंच पांडव ये 12 साल पूरे करके वापिस आने के बाद, किसने बोला कि पंच पांडव को उनके राज्य को वापस मत दो, ऐसे किसने बोला, तुमने बोला। और अभिमन्यु को युद्ध भूमि में 7 महारथी साथ में मारे थे, उनके लिए सुझाव कौन दिया, तुमने दिया। और ये सब चीजों में तुमने धोखा दिया है दूसरे लोगों को, और विधि विधानों को तुमने पालन नहीं किया है। अभी तुम ऐसे परिस्थिति में हो जिसमें तुम दूसरों को बोल रहे हो कि तुम धर्म का पालन करो, आज तुम जान से नहीं बचोगे, अभी मारा गया, मारा जाएगा तुम, ऐसे बोलकर अर्जुन को बोला अभी मारो इसको। देखिए, अगर भगवान सारे कौरवों को मारना चाहते थे तो एक अपने हाथ में चक्र लेकर सारे कौरव सेना को मार सकते थे, इतना क्षमता भगवान के पास था। लेकिन भगवान दिखाना चाहते थे कि तुम धोखा देते हो भगवान भक्तों को, तो मैं भी तुमको धोखा दूंगा। ऐसे देखकर शटो शाट्यम किया भगवान ने ऐसे कौरवों के साथ, ऐसे ऐसे भगवान ने की। तो लेकिन भगवान के धोखे देने में एक महत्वपूर्ण बात है, भगवान अगर किसी को धोखा देते हैं, किसी को मारते हैं, उससे उस व्यक्ति को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। जैसे आपको मालूम है वामन देव को भगवान ने कथाकथित रूप से धोखा दी, उन्होंने बोला तीन पग चाहिए मुझे, लेकिन तीनों लोगों को ले लिया उनसे। लोग बोलते हैं कि भगवान ने धोखा दे दिया, धोखा नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि वामन देव किस लिए आए थे, ये देवताओं के लोगों को असुरों ने छीन लिया था, उसको वापस करने के लिए वामन देव आए थे। अगर एक व्यक्ति की पैसे चोरी करके कोई चोर लेके जाता है तो पुलिस लोग चोर को पकड़कर पैसे लेकर उस व्यक्ति को वापस करते हैं, ऐसे भगवान करने के लिए वामन देव के रूप में आए थे, इसलिए धोखा नहीं दिया भगवान ने। साथ साथ जब वामन देव के सामने अपना सर झुक गया बलि महाराज, बलि महाराज उनके आश्रय लिया, भगवान के भक्त बन गया, तो भगवान ने बोला कि मैं तुमसे इतना खुश हूँ तुमको मैं सुतल लोक प्रदान करता हूँ जो स्वर्ग से भी बढ़कर है, और उधर मैं खुद तुम्हारा द्वारपालक बनूंगा। देखिए भगवान का हर दिन दर्शन प्राप्त होता था उसको वामन देव का, और बोले कि उधर तुम्हारा राज्य होने के बाद तुम स्वर्ग में जाकर तुम इंद्र बनोगे, अगले इंद्र बनोगे। तो तीन वरदान दिया भगवान ने बलि महाराज को, और अंत में तुम भगवत धाम में वैकुंठ धाम में तुम आ जाओगे। ऐसे तो भगवान के अभी पूतना को भगवान ने धोखा दी, उनके प्राण छीन ली, लेकिन पूतना को क्या पदवी दिया भगवान ने गोलोक वृंदावन में? एक दात्री की पदवी दी है ना, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सया पायदप्य साधी ले वेगतिं दात्री मुचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेम। उद्धव जी पूछ रहे हैं भागवत में, मैं किस व्यक्ति की शरण लूं इस दुनिया में कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि कृष्ण से कौन ज्यादा दयालु हो सकता है इस दुनिया में, जो उनको मारने के लिए आई थी पुतना अपने स्तन में विष मिलाकर, कालकूट विष मिलाकर, ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने अपने धाम में एक दात्री का स्थान दिया, अपने माता का स्थान दिया। कौन कोई कृपालु हो सकता है कृष्ण से ज्यादा? देखिए सुखदेव गोस्वामी ने ये गीत सुनी जंगल में, ये वुडकटर लोगों से, क्या बोलते हैं वुडकटर, लकड़हारी, लकड़हारे लोग जंगल में लकड़ी काट रहे थे तभी ये गीत गा रहे थे, ये श्लोक जो मैंने आपको बोला। इसको जब सुना सुखदेव गोस्वामी, उस समय ब्रह्म ज्ञानी थे, ये श्लोक को सुनकर उनकी आंखों में आंसू निकल गया। कौन ये व्यक्ति कृष्ण है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, इतने दयालु पूतना को उन्होंने। इसलिए आप देखेंगे भागवत के दशम स्कंद में पूतना वध को बहुत विस्तृत रूप से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि उसके द्वारा वो कृष्ण भावनावृत में जुड़े, इसलिए उसको बहुत एलाबरेटली बताते हैं इसे। इसलिए भगवान ने बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो पूतना को धोखा दिया, लेकिन असली रूप में देखा जाए तो भगवान ने पूतना को बहुत ऊंचा पदवी दी। भगवान ने वामन देव ने धोखा दी बलि महाराज को, लेकिन बलि महाराज के दास बने भगवान, उनके द्वारपाल बने भगवान, ऐसे हम देख सकते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान पवित्र हैं, भगवान शुद्ध हैं, भगवान अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट मतलब भगवान पूर्ण हैं। इसलिए भगवान जो भी कार्य करते हैं वो भी पूर्ण है, उसमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है। अगर भगवान देख बाहरी दृष्टि से दिखाई देता है कि भगवान ऐसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन उस धोखे में भी अच्छा उनके लिए भलाई है दूसरे व्यक्ति को। जैसे नारद मुनि शाप देते हैं किसको, नलकुर मणिग्रीव को, लेकिन नलकुर मणिग्रीव को किधर जन्म मिलता है? ये नंद भवन के पीछे वह तमल अर्जुन पेड़ बनते हैं और भगवान कृष्ण की लीला को देखते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के महान भक्त, नहीं तो कभी कभी भगवान खुद किसी को ऐसे बाहरी दृष्टि से लगता है कि ये धोखा दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भलाई के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण सेंटेंस बताते हैं इस तात्पर्य में, भगवान की इच्छा जो है वो ही करना चाहिए। अभी धृतराष्ट्र को मालूम पड़ गया कि भगवान की इच्छा है कि मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए, इसलिए वो जंगल चले गए। वो इसको लेकर कोई भी भक्त किसी दूसरे भक्त को धोखा नहीं दे सकता है, वो बोल नहीं सकता है कि मैं तो भक्त हूँ, मैं तुमको धोखा दे रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं कर्मी लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कभी कभी आप ऑफिस में जाते हो, आप कोई कर्मी व्यक्ति को आप प्रसाद देते हो, मैंने लाया कुछ चपाती लो सब्जी लो, तो वो भी आपको चपाती देना चाहता है क्योंकि वो प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले सकते हो क्योंकि उसमें कांदा लहसुन है अपने, वो प्रसाद भी नहीं है, हम ले नहीं सकते हैं। तो कभी कभी आपको कुछ झूठ बोलना होता है कि नहीं नहीं मैं मेरा डाइट होता है, मैं खाता नहीं हूँ बाहर, ये ऐसे में बनाकर लाया हूँ, मैं यही खा सकता हूँ, ऐसे कुछ बोलना पड़ता है आपको। लेकिन वो झूठ का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप क्यों बोलते हैं? सिर्फ अपने कृष्ण भावनामृत को बचा कर रखने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए बोला युद्ध भूमि में। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए भगवान कौरवों को पांडवों को दोनों को अपने बच्चों के समान मानते हैं। कभी कभी एक माता एक बच्चे को आलिंगन देती है, दूसरे बच्चे को लाफा देती है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता है, ठीक तरह से अपने कर्तव्यों को निभाता नहीं है। इस तरह कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में धर्मपरायण लोगों को एक कोर में और अधर्मवादियों को दूसरे ओर में भगवान ने लाया और युद्ध करवाया और धर्म की स्थापन करने के लिए भगवान आए थे।
और
साथ साथ हमें समझना चाहिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। हमारी धर्म छोटा मोटा धर्म है, ये एक मोमबत्ती के समान है, लेकिन भगवान का धर्म कैसा है? सूर्य के समान है। सूर्य के सामने मोमबत्ती का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं, सबकी भलाई के लिए, उनमें किसी भी तरह का दोष नहीं है, त्रुटि नहीं है। लेकिन वो त्रुटि और दोष धोखा देने का, धोखा खाने का किसके अंदर है? हमारे अंदर है। ये हमें समझना चाहिए। तो हमारे ये प्रवचन का सारांश ऐसा है कि पहला मैंने बोला कि हमारे चार त्रुटियां हैं, इसलिए बद्ध जीव के अंदर एक त्रुटि है, क्या है? वो धोखा देना। तो हमारे अंदर भी वो त्रुटि है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र करके भागवत पढ़ के धीरे धीरे इसके ऊपर उठकर हमें ऐसी स्थिति में आना चाहिए कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए और दूसरे कुछ चीज के लिए हमें धोखा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम धोखा देंगे दूसरों को तो अगले जन्म में हम धोखा खाएंगे। आप समझेंगे किस व्यक्ति को अभी हम करते हैं, हमारे दुख जो हम भोग रहे हैं दुनिया में, ये अभी का दुख नहीं है, पूर्व जन्म के गलत कार्य के कारण अभी हम दुख भोग रहे हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान 12 साक्षियों के साथ देख रहे हैं हर क्षण, जैसे सूर्य, चंद्र, समुद्र, जमीन, हवा, अग्नि, ऐसे 12 साक्षी हैं और हमारे परमात्मा सब देख रहे हैं। धोखा देना बहुत आसान है, लेकिन जब भगवान देखते हैं तो छोड़ेंगे नहीं हमें, उनके आंखों से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए पहला चीज है हमें धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरा चीज हमने बताया हमें धोखा खाना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के समान हमें सतर्क और बुद्धिमान होना चाहिए, और अगर हम उतना बुद्धिमान नहीं है तो हम दूसरों से पूछना चाहिए, बुद्धिमान लोगों से पूछना चाहिए, क्या मैं इसे करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, क्या हम कर सकते हैं, हम इस दिशा में जा रहे हैं या क्या सही है कि नहीं है, 3-4 लोगों से हम पूछ सकते हैं और सोच विचार करके हमें काम करना चाहिए। वो दूसरा बात हमने बताया। और तीसरी बात हमने बताया कि कभी कभी हम भगवान के भक्त जो होते हैं वो दूसरों को झूठ बोलते हैं अपने कृष्ण भावनामृत को बचा कर रखने के लिए, दूसरों को कुछ तकलीफ देने के लिए नहीं, अपने ही कृष्ण भावनामृत को बचा कर रखने के लिए झूठ बोलते हैं। वो झूठ झूठ नहीं माना जाता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो अनुकूल है वो करना चाहिए, ऐसे करते हैं। और चौथा बात हमने बताया कि अगर कोई भगवान को धोखा देना चाहता है वो धोखा खाएगा। ऐसे एक व्यक्ति था, उसने प्रार्थना किया बालाजी को, बालाजी अगर लाटरी लग जाए मुझे तो जो भी पैसा मुझे मिलता है मैं आधा आपको दे दूंगा, ऐसे बोला उसने। और वापस उसने प्रार्थना किया, मैं अलग अलग लॉटरी ट्राई कर रहा हूँ, अभी 1 लाख का भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर 1 लाख मिलेगा तो तुमको आधा दे दूंगा मैं, और जो भी गिरेगा मुझे लॉटरी में मैं आधा दे दूंगा आपको, ऐसे बोला था उसने। और उसको लॉटरी लग गया तो 1 लाख के बदले उसको 50,000 मिली। तो उसके मित्र ने पूछा कि तुम तिरुपति जा रहे हो कि नहीं? वो बोला कि नहीं जा रहा हूं। क्यों? बोला कि अभी क्या 50,000 ही मिला मुझे, तो लगता है कि तिरुपति बालाजी ने मेरा बाकी 50,000 उन्होंने पहले से ले लिया, ऐसे बोला उसने। तो उसके मित्र ने बोला, ए ऐसा मत बोलो, ये बहुत बड़ा पाप है, भगवान के साथ ऐसे खेलो मत, धोखा मत दो, अगर तुमने वचन दिया तो उसको पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बोला ठीक है मैं कर दूंगा 50 में मैं 25,000 दे दूंगा भगवान को, ऐसे बोला उसने। लेकिन अपने मन ही मन सोचा कि ये मूर्ख है मेरा मित्र है, ये क्या है इस तरह मुझे, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ये दिमाग आता है बोलते हैं, ये क्यों है मेरा तकलीफ दे रहा है इसे बोलकर। अरे मुझे मालूम है कि पैसा बहुत कठिनता से मिला है 50,000, ठीक है मैं बालाजी को मैं 100 रुपया दे दूंगा, ऐसे सोचा उसने। तो तिरुपति गया, वो बालाजी के हुंडी में डालने के लिए 100 रुपया डाला, लेकिन उसके महंगे एक सोने का अंगूठी था जो 24,900 रुपये का था, वो भी गिर गया अंदर। तो गया, लोगों को रोने लगा, रो पड़ा, चिल्लाया, उधर जाकर पूछा मैनेजमेंट को, मेरा सोना सोने का अंगूठी गिर गया अंदर, आप कृपया वापस कर दीजिए। लोगों ने बोला कि हुंडी के अंदर जो गिरता है वो वापस नहीं किया जाता है। तो भगवान को जो धोखा देना चाहते हैं वो धोखा खाएंगे, वो ये याद रखना चाहिए। और पांचवा चीज हमने बताया कि अगर भगवान धोखा भी देते हैं किसी को, उसको बलाई ही करते हैं। जैसे पूतना को भगवान ने दात्री की स्थान दी, बलि महाराज को भगवान ने अपने भक्त बनाया, उनके दास बने भगवान खुद। तो कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी में वाद विवाद होता है कि कितना डोनेशन देना चाहिए मंदिर को। कभी पत्नी बोलती है हम 1,000 दे देंगे महीने में, पति बोलता है नहीं नहीं 50 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे। तो उनमें कभी कभी वाद विवाद होता है, और जो वाद विवाद करने वाले वो सोचते हैं कि देखो तुम इतना उदार हो, हमारा घर खाली पड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा घर में, इतना दान देते हो तुम। ऐसे कभी कभी पत्नी नहीं तो पति, दोनों में कभी कभी एक उदार होते हैं एक उदार नहीं होते हैं, ऐसे कंजूस होते हैं कोई है? ये कंजूसीपन अनेक लोगों के पास तक, ऐसा नहीं कि धनी लोग कंजूसी नहीं है, और ऐसा नहीं कि कम पैसे वाले कंजूसी हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि कम पैसे वाले भी इतना उधार देते हैं। आप देखते हैं एक आदमी पानी में गिर गया नदी में, तो बचाने के लिए एक आदमी बोट में गया और बोला कि हे हाथ दे दो, हाथ दे दो, हम ऊपर उठाते हैं तुमको। तो वो आदमी पहले ऐसे हाथ लाने वाला था, अंदर ले लिया। तो दूसरे आदमी ने बोला कि ऐसे मत मांगो, क्योंकि ये कंजूस आदमी है, इसको देने का आदत ही नहीं है, इसलिए हाथ मांगेगा तो देगा नहीं। वो उसको बोला कि मेरा हाथ ले लो, ऐसे हाथ दिया तुरंत हाथ पकड़ लिया तुरंत उसने। ऐसे हम देखते हैं कि लोग कंजूस होते हैं ऐसे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान को देने से हमें कम नहीं पड़ता है कभी। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, जब देना है हमें तभी देंगे भगवान। जैसे सुदामा ब्राह्मण को भगवान ने इतना दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं भगवान से कुछ। अगर ऐसा नहीं कि भगवान के सब भक्त गरीब बनते हैं, नहीं तो गरीब हो जाते हैं, भगवान के इतने धनी भक्त हैं। कभी कभी भगवान पैसे छीन लेते हैं, क्यों, धन के कारण। अगर कोई भक्त गलत मार्ग में चला जाता है तो भगवान पैसे छीन लेते हैं। अगर कोई भक्त है भगवान की सेवा में पैसा यूज करता है, भगवान देते रहते हैं उसको, और वो भक्त भी यूज करता रहता है भगवान की सेवा में, ऐसे ऐसे भी उदाहरण है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान कभी धोखा देते नहीं है किसी को, अगर देते भी हैं तो वो भी उसकी भक्ति के भलाई के लिए है ऐसे। तो ये हमने ये बात के बारे में क्यों आज बात की, उसका भी कारण है। मैंने सुना कि नए मंदिर के पास में अनेक लोगों ने जमीन खरीदी है, छोटा छोटा प्लाट खरीदा है, बड़ा प्लाट खरीदा है। कभी कभी मुझे फोन कॉल आता है, राधे श्याम प्रभु आपसे एक मीटिंग लेना है, हम लोग आ रहे हैं। मैंने कोई बोलता है कि मैंने जमीन लिया है, कोई बोलता है कि हमने जमीन दिया है, और दोनों के बीच में झगड़ा होता है इसे। तो मेरे पास आते थे भक्त लोग, तो ये एक व्यक्ति है वो 8 लाख में कुछ जमीन लिया था पहले, अभी वो बोल रहा है मुझे 18 लाख चाहिए, अभी इंटरेस्ट के साथ चाहिए और आज के रेट के अनुसार मुझे चाहिए 18। तो वो जो आदमी जमीन देता वो बोल रहा है कि मैं 8 लाख तुमने दिया, मैं 8 लाख दे दूंगा वापस। तो दोनों मेरे पास आए झगड़ा करने के लिए। तो मेरे गुरु महाराज ने बोला कि तुमको इस झंझट में कभी पड़ना नहीं चाहिए। अगर लोग जमीन के संबंध में लड़ेंगे, पैसे के संबंध में लड़ेंगे, लेकिन तुम ब्रह्मचारी हो, तुम शास्त्र पढ़ो, अगर चाहे तो शास्त्र को पढ़कर उनको अच्छी तरह समझाओ। बोला इसलिए मैंने समझा दिया आपको, इतना समझा। और इसको समझने के बाद लोगों के अंदर अकल होना चाहिए, किसको पैसा देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, वो लोग देखना चाहिए। लेकिन तुम अगर इन चीजों को सुलझाने में तुम प्रयत्न करोगे तो तुम साधु हो, तुम साधु के स्तर पर रहना चाहिए बस। नीचे उतार कर लोगों के झगड़े के बीच में पड़ोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा स्तर भी चला जाएगा, तुम्हारा हृदय भी अशुद्ध हो जाएगा उससे। देखिए कभी कभी लोग भक्त बनने के बाद भी जमीन के लेने देने में, पैसे के लेने देने में झगड़ा होता है लोगों के बीच में, क्योंकि हम भौतिक चेतना में जब उतरते हैं नीचे तभी सब झगड़ा शुरू हो जाता है। जब हम ऊपर उठते हैं दिव्य स्तर पर तभी कोई झगड़ा नहीं है, तभी हम हर एक व्यक्ति को हम भगवान के बच्चे के समान देख सकते हैं हम। इसलिए मैंने शास्त्र के तौर पर मैं आपको बताया ये धोखा देना धोखा खाने के बारे में वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। तो इसको समझकर इसके अनुसार हमें काम करना चाहिए और सतर्क रहकर सावधानी से लेना देना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ इस प्रवचन के द्वारा मैं किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी की बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जमीन के लेने देने में अनेक लोग पड़े हैं इसमें। तो उन दिनों में लोग बोले कि हमारा फ्लैट्स आ रहा है नए मंदिर के पास में, तो आप नोटिस बोर्ड में लगा दीजिए। ऐसे 4-5 लोग आए मेरे पास, तो हम नोटिस बोर्ड में भी लगाने वाले थे, लेकिन बाद में कभी कभी जब झगड़ा होता है लोग सोचते हैं कि इस्कान का इस्कान ही बुरा है, इस्कान को बुरा बोलते हैं, प्रभुपाद जी को बुरा बोलते हैं, ब्रह्मचर्य को बुरा बोलते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम किसी का भी हम बढ़ावा नहीं करेंगे। अभी हमारे मंदिर के आसपास में जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो लोग भी उनके प्रोजेक्ट के ब्रोशर में लिखा है दिस इज नॉट इस्कान प्रोजेक्ट, ये इस्कान का प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे उसमें लिखा है उन्होंने। और हमारे नोटिस बोर्ड में भी मैंने एक लगाया है, आपने देखा होगा कि अगर आपकी जमीन के पैसे के लेने देने में कुछ समस्या आता है मंदिर इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप मत बोलिए कि कोई तिलक वाला आता कोई कंटी वाला पान आता, ऐसा मत बोलिए। उससे हमने जमीन की पैसे की लेना देना की, उसने धोखा दे दिया, मंदिर को बदनाम मत करना आप, क्योंकि आप प्रभुपाद जी को इस्कान को अपराध करने से हमें हम नीचे जाते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इसके इसको सोचकर मैंने आज प्रवचन बोली, अगर इसको सुनने से किसी को लगा कुछ बुरा लगा कुछ अलग लगा कि मैंने कुछ अपराध किया आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं शास्त्र के तौर पर ही मैं बता रहा था आपको। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, थैंक यू वेरी मच। क्या अनाउंसमेंट कदम कृष्ण प्रभु है इस दौरान गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आने वाले हैं मंगलवार शाम को और बुधवार सुबह को। हरी बोल। एक्चुअली महाराज जी पहले भी आने वाले थे एक दो दिन के लिए, लेकिन आ नहीं पाए, अभी कल फोन आया था। अभी महाराज इधर ही इसी हॉल में महासत्संग देंगे ट्यूसडे शाम को, ट्यूसडे मंगलवार शाम को। और महाराज बोले कि बुधवार सुबह भागवतम क्लास नहीं।